का था, रूह वही रूह नया। गाथा पर आप सुन रहे हैं रविंद्र कालिया जी की लिखी कहानी डरी हुई औरत। तुलना ये हरगिज नहीं चाहती थी कि गौतम तो सोया रहे और वो नहा धोकर तैयार हो जाए। उसने 2-3 बार गौतम को जगाने की कोशिश की, रेडियो की आवाज ऊंची की, निर्मल को बेडरूम से ही चाय का आदेश दिया और जोर जोर से खिड़कियां खोली, लेकिन गौतम था कि नींद में चित। वह बाथरूम में जाती और शीशे में अपने दांत देखकर लौट आती। उसने पलंग के पास ही गौतम के लिए शेव का सामान भी रख दिया था। गौतम, जो सुबह सुबह अखबार पढ़ने के लिए इतना उतावला होता है, आज इससे भी बेनियाज था। शायद इसलिए कि आज इतवार था। उसकी चिकनी खोपड़ी के ऊपर एक मक्खी बैठी थी। तुलना ने देखा तो अपनी लंबी लंबी उंगलियां मुंह पर रख ली और फाह की आवाज के साथ कुर्सी पर ढेर हो गई। फिर उसकी नजर अपने नाखूनों पे गई तो नेल पॉलिश उठा लाई। नेल पॉलिश से नाखून रंगते हुए फुसफुसाई, व्हाट अ लेजी हबी, इस समय खुशवंत होता तो जरूर कह कहे लगते। वह गौतम को 9 बजे तक सोते देखकर जरूर जी भर कर हंसता। खुशवंत लेक्चरशिप पर गढ़े हुए चुटकुले सुनाने के बाद अक्सर कहा करता है, इफ लेक्चरशिप डजंट मेक अ मैन लेजी, इट डेफिनेटली मेक्स हिम बाल्ड। क्यों गौतम, क्यों तुलना? तुलना मुस्कुरा दिया करती है और गौतम अपनी चंदिया पर हाथ फेरते कहा करता, बच्चा एक बात हमेशा हमेशा के लिए याद रखो कि गंजा आदमी कभी आलसी नहीं होता। जब तुलना से और बर्दाश्त ना हुआ तो उसने हस्बे मामूल बड़बड़ाना शुरू कर दिया, तुम्हारा मूड देखकर लगता है कि आज इतवार है, गौतम ने निहायत सादगी से आंखें खोलते हुए कहा। आज इतवार है और तो हमें खुशवंत के यहाँ जाना चाहिए था। दरअसल गौतम रात से ही खुशवंत के निमंत्रण को स्वीकार कर लेने के बाद से परेशान हो रहा था। खुशवंत ने जब निमंत्रण दिया था तो वह उसकी किसी भी बात को टालने के मूड में नहीं था। गो उसे मालूम था कि इतवार वो किसी कीमत पर नष्ट नहीं कर पाएगा। प्रोग्राम को स्वयं ही उसने आगे बढ़ाया था। खुशवंत ने लंच के लिए कहा था, गौतम ने कुतुब या ओखला चलने का प्रस्ताव रख दिया था। तुलना को चुप देखकर उसने कहा, बात यह है तुलना कि मुझे फाइनल के लिए सेमिनार तैयार करना है, तुम झटपट तैयार होकर अकेली हो आओ। खुशवंत से कहना? खुशवंत से क्या कहना, आपको नहीं जाना था तो पहले कह दिया होता। तुलना को उम्मीद नहीं थी पूरी नींद लेने के बाद भी गौतम ऐसी बात करेगा। मुझे सदा की तरह घर आकर मालूम हुआ कि मुझे हाँ नहीं करनी चाहिए थी। अब नाहक नाराज होकर छुट्टी तबाह ना करो, उठो और तैयार होकर भाग जाओ। तुलना वहीं बैठी रही, बोली, आपको अच्छा लगेगा मेरा अकेला खुशवंत के यहाँ जाना? अरे तुम कमला बिमला जैसी बातें क्यों कर रही हो, जरा सोचो तुम्हें अकेला देखकर खुशवंत कितना खुश होगा, गौतम ने तुलना को चिढ़ाने के आशय से कहा। सारा दिन चहकता फिरेगा। तुलना वाकई चिढ़ गई, मगर अंदर ही अंदर उसे यह अच्छा भी लग रहा था। दूसरे कमरे में जाते जाते इतना जरूर कह गई, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि आप इस स्तर पर उतर आएंगे। गौतम ने बाथरूम में जाकर ब्रश किया और वह भी तुलना के पीछे पीछे चला गया। 5 मिनट बाद तुलना कंधों पर तौलिया रखे कह रही थी, कितना अच्छा होता अगर आपको सेमिनार ना लिखना होता, हम साथ साथ चलते, पहले खुशवंत के यहाँ लंच लेते, फिर ओखला चलते, गाड़ी मैं ड्राइव करती। मेरा ना जाने का एक कारण ये भी है, तुम्हें मालूम ही है ना, मैं अभी जीना चाहता हूँ, गौतम ने मनी मन खुश होते हुए कहा। अच्छा अब देर ना करो, स्नान करो और भाग जाओ, मेरे लिए सिगार लेती आना। तुलना बाथरूम से निकली तो उसे गौतम की उपस्थिति में बाल संवारना, आईने के सामने इतनी देर खड़े रहना और फिर अपनी मनपसंद साड़ी पहनकर चुपके से अकेले निकल जाना अटपटा सा जरूर लग रहा था। एक बार तो उसने अपना कार्यक्रम स्थगित करने की भी सोची, लेकिन घर में रहकर भी क्या होगा, गौतम काम में जुट जाएगा और तुलना स्वेटर बुनेगी, रेडियो सुनेगी, सोएगी, बोर होगी। गौतम से बात करने की कोशिश की तो वह इतवार इतवार चिल्लाएगा। उसने आईने में देखते हुए कहा, मैं जाऊं फिर? उसे लगा कि उसने दबे स्वर में यह बात की थी। जितनी देर गौतम ने जवाब नहीं दिया, वह होठों के बीच जुबान दबाए आईने में अपना चेहरा देखती रही। तुम एक ही बात को बार बार क्यों पूछती रहती हो? गौतम को याद आया, एक ही बात को बार बार पूछना तुलना की पुरानी आदत है। एक जमाना था वह पूछा करती थी, सच बताइए मैं आपको अच्छी लगती हूँ? फिर पूछने लगी, आप लेक्चरशिप छोड़कर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब क्यों नहीं करते? फिर पूछने लगी, आप महत्वाकांक्षी क्यों नहीं है? फिर पूछने लगी, आपके कॉलेज में को एजुकेशन क्यों है? फिर एक दिन जब खुशवंत का तबादला भी दिल्ली हो गया तो पूछा, खुशवंत विवाह क्यों नहीं कर लेता? इस वक्त जो तुम देर कर रही हो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूंगा। तुलना के जाने के इरादे को दृढ़ करने के आशय से गौतम ने आदतन झूठ बोला। शाम को खुशवंत को साथ लेती आना, हम कहीं अच्छी जगह डिनर लेंगे। तुलना ने वार्डरोब खोली और टंगी हुई साड़ियों को असमंजस से देखने लगी। गौतम ने उसकी ये समस्या हल कर दी। साड़ियों की कतार की ओर देखते हुए उसने कहा, हल्के पीले रंग की साड़ी तुम पर हमेशा अच्छी लगती है। उक्त साड़ी खुशवंत ने ही तुलना को उसके बर्थडे पर भेंट करी थी। तुलना ने कुछ देर सोचकर वही साड़ी निकाल ली और वैसा ही ब्लाउज, वैसा ही पर्स और वैसी ही चप्पल। फिर वह बाथरूम में चली गई और लौट कर आई तो झेप रही थी। मैं तो कहती हूँ इकट्ठे चलते, उसने कहा, मुझे अकेले जाने में संकोच हो रहा है, खुशवंत भी नाराज होगा। अरे कह देना गौतम एक जरूरी काम से नहीं आ पाया, और सुनो मेरे लिए सिगार जरूर लेती आना। तुलना ताजा धुली साड़ी की सर सर के साथ बाहर निकल गई। गौतम ने दो तीन सिगरेट फूंके, अखबार चाटा, चाय पी, रैक से एक छोटा सा पैम्फलेट निकाल कर झाड़ा और फिर मुंह में सिगार दबाए चप्पल घसीटता हुआ बाथरूम में चला गया। टब में लेट कर गौतम का ऑक्सीडेंटल सिविलाइजेशन पर एक पैम्फलेट पढ़ने का मन था, परंतु टब का पानी गंदला हो रहा था। गौतम ने शरीर पर साबुन मला और उठकर शावर के नीचे बैठ गया। उसे यह सोचकर अपने पर हंसी आई कि कैसे छुट्टी के रोज एकांत के मोह में वह बाथरूम में घंटों नहाया करता था। उसकी यह आदत तो उस दिन छूटी थी जब उसे बहुत देर तक नहाते देख तुलना ने शोर बरपा कर दिया था। उसने तुलना की दो तीन आवाजों का जवाब नहीं दिया तो वह पागलों की तरह दरवाजा खटखटाने लगी थी। वह कितनी देर तक उसी तरह तुलना की घबराहट का आनंद लेता रहा, किंतु जब तुलना के साथ साथ नौकर भी दरवाजा पीटने लगा तो उसने दरवाजा खोल दिया। तुलना का चेहरा सफेद पड़ गया था और उसकी टांगें कांप रही थी। गौतम को देखकर उसने बाहों में मुंह छुपा लिया था और दीवार के साथ सटी सटी बहुत जोर से रोने लगी थी। उसे कांपता देखकर पहले तो गौतम घबराया था, परंतु जब ग्लूकोज का गिलास पीने के बाद तुलना पलंग पर लेटकर सुबकने लगी तो गौतम कुछ आश्वस्त हुआ। तुम इतनी कमजोर दिल हो ये जानते हुए भी मैं चुप रहा, गौतम ने कहा। मैं भी कैसा आदमी हूं, अगर मुझे कुछ हो जाता, तुलना ने दांतों को होंठों के बीच ले लिया। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, गौतम ने कहा, तुम्हें डर किस बात का लग रहा था? गौतम के बार बार इसी प्रश्न पर जोर देने के बाद तुलना ने कहा था, मुझे अचानक लगा जैसे आपने सुसाइड कर लिया है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, मैं भी कितनी मूर्ख हूँ। सुसाइड, गौतम को बात पसंद आई, बोला, सुसाइड तो हम इकट्ठे करेंगे, अभी स्टूडेंट्स के इम्तहान नजदीक है और झील का पानी भी अभी बहुत ठंडा है। ये सारी फिजूल की बातें आपको लेक्चरशिप ने ही सिखाई है ना? आप सारा दिन न जाने क्या उटपटांग पढ़ते रहते हैं और उल्टी सीधी बातें सोचते रहते हैं, तुलना ने शिकायत के लहजे में कहा। देखिए आपके सर के बाल कितनी जल्दी झड़ गए हैं, खुशवंत भी तो आपका क्लास फेलो है, मगर देखने में कितना स्मार्ट लगता है। शादी से पहले सिर्फ एक बात स्पष्ट करना भूल गया था कि मैं बहुत ज्यादा सुंदर और एम्बिशियस नहीं हूँ, गौतम ने कहा। अब तुम ये बात मुझसे कितनी बार कहलवाओगी? गौतम को याद है उस दिन दोनों ने बहुत आत्मीय क्षण बिताए थे। मिलकर कॉफी पी थी, पुराने बीते हुए कुछ सुनहरे दिनों को याद किया था और फिर तुलना ने वह कविता सुनाई थी जो वह शादी के पहले अक्सर सुनाया करती थी। तुमने मुझे एक नया दर्द दिया है, मेरे सूने घर के पुराने ठूंठ पर फिर से हरी हरी पत्तियां उग आई हैं, इसलिए तुम और गहरा दर्द दो, उंगलियों का स्पर्श और दृष्टि की आंच दो। लगता है सूर्य मेरा बंधु है, मैं सौर परिवार की एक सदस्य। शावर के नीचे बैठे बैठे जब गौतम को सर्दी महसूस होने लगी तो उसने पानी बंद कर दिया और उसे कोई जल्दी नहीं थी, उठकर तौलिए से जिस्म नहीं पोछा। वह शरीर की हरारत और हवा के स्पर्श से ही तौलिए का काम लेना चाहता था। हवा के हल्के हल्के स्पर्श उसे भले लग रहे थे। बाथरूम से निकलकर उसने कॉफी पी, सहगल का एक गाना सुना और फिर वह सोचते हुए कि शादी का मतलब ये क्यों होता है कि सांस लेने वाले दो अलग अलग प्राणी उम्र भर हर क्षण साथ ही रहे। स्टडी रूम में वो बंद हो गया। पढ़ते पढ़ते गौतम की आंख जरूर लग गई होगी, जो वह जोर जोर से दरवाजा खटखटाए जाने पर हड़बड़ा कर उठा। वो जानता है तुलना ही इतनी जोर से दरवाजा खटखटा सकती है। कुर्सी के नीचे से कमीज की बाह खींचते हुए उसने कहा, वेट प्लीज। दरवाजा खोलकर उसने तुलना से कहा, अच्छा हुआ मेरी आंख खुल गई, नहीं तो तुम फायर ब्रिगेड को फोन कर देती। तुलना के साथ खुशवंत भी था। दोनों के कपड़ों में एक बहुत प्यारा कंट्रास्ट देखकर पहले तो उसने कुछ कहना चाहा, मगर बात उसके मुंह में घुलकर रह गई। उसने दोनों को इकट्ठा संबोधित करते हुए कहा, आइए अंदर आइए, आप बाहर क्यों खड़े हैं? मैं पढ़ते पढ़ते थोड़ा ऊंघ गया था। मास्टरी में आदमी पढ़ा सकता है या ऊंघ सकता है? खुशवंत ने कहा, वी हैड अ नाइस टाइम। गौतम को उम्मीद थी खुशवंत उसके ना आने पर अफसोस प्रकट करेगा। खैर यह बात भी उसे बुरी नहीं लगी, क्योंकि वह महसूस कर रहा था कि उसका वक्त भी अच्छा बीता है। उसने दोनों को बैठने के लिए कहा और निर्मल को चाय बना लाने के लिए। खुशवंत ने टेबल फैन के आगे खड़े होकर बुशर्ट के बटन खोल दिए थे और तुलना पीली साड़ी में लिपटी एक कोने में दुबकी खड़ी थी। कहो कैसा रहा, कहाँ कहाँ गए? गौतम ने कहा। बैठो तुलना, खड़ी क्यों हो, चाय आ रही होगी। गौतम का यूं बैठने के लिए और चाय के लिए कहना तुलना को काट रहा था। वह महसूस कर रही थी जैसे अपने ही घर में अजनबी हो। खुशवंत बुशर्ट के बटन बंद करता हुआ गौतम के पास आया और उसके कंधे थपथपाता हुआ बोला, तुमने आज एक बहुत अच्छा प्रोग्राम मिस किया। तुम्हें तुलना ने बताया होगा ना मुझे सेमिनार लिखना था? आम तुलना बोली, मैंने बताया था और खुशवंत को कोई हैरानी नहीं हुई थी। तुलना ने खुशवंत की ओर झुकते हुए कहा और फिर आराम से बैठ गई। कैसा रहा, आप लोग कहाँ कहाँ गए? हम कुतुब गए थे और फिर वापसी में हौज खास, खुशवंत ने कहा। हमने आपको बहुत मिस किया, तुलना बोली। खुशवंत ने मुझे ड्राइव नहीं करने दिया, कह रहा था एक्सीडेंट हो गया तो गौतम को तुलना कहाँ से दूंगा। तुलना के लहजे में शिकायत थी, लेकिन अपने ही घर में बैठकर दूसरे की शिकायत करना उसे विचित्र लग रहा था। उसे लगा गौतम निर्मल को चाय के लिए ऐसे कह रहा है जैसे खुशवंत के साथ साथ तुलना भी मेहमान हो। खुशवंत ने ड्राइव नहीं करने दिया तो उसने ठीक ही किया, अब इसलिए गुपचुप बैठी हो? गौतम ने पूछा। मेरे सिगार लाई हो? तुलना ने दोनों होंठ भींच लिए, बोली, उफ सिगार लाना तो मैं भूल ही गई। सच गौतम, मुझे याद था फिर मैं भूल गई, अभी मंगवाती हूँ, रियली वेरी सॉरी। मुझे खुशी है तुलना भूल गई, खुशवंत ने कहा और तुलना की तरफ देखा। तुलना ने गौतम की तरफ देखा। हौज खास कैसा लगा? गौतम ने कहा। वहां बहुत वीरानगी थी, खुशवंत ने कहा। बेशक वहां बहुत से लोग थे, लग रहा था सभी अपना अपना अकेलापन ओढ़े हैं। मुझे ऐसी जगह जाकर कोफ्त होती है, यही कोफ्त मुझे यहाँ तुम्हारे घर में हो रही है। तुमने तुलना से कोई गीत नहीं सुना? गौतम ने पूछा। तुलना खिड़की से बाहर देख रही थी, उसके जूड़े में मोतिया की कलियों की वेणी लगी थी, जिसकी हल्की हल्की गंध कमरे में भर गई थी। मैंने तो गाना सुनाने के लिए कहा था, खुशवंत बोला, लेकिन ये उदास बैठी रही, कहा कि उसका मन गाने को नहीं रोने को हो रहा है। यार तुम दोनों बेवकूफ हो, गौतम खुशवंत की तरफ मुड़कर बोला, तुम औरत को खुश नहीं कर सकते। तुलना की ओर देखकर उसने कहा, और तुलना तुम खालिस औरत हो, यानी कि निरी इमोशनल बल्कि इम्पल्सिव। मैंने तुम लोगों को हौज खास की वीरानगी पीने के लिए नहीं भेजा था, वह तो निराश प्रेमियों की जगह है। वो हंसने लगा, तुम खालिस मास्टर हो गंजे और आलसी, तुम सिर्फ भाषण पिला सकते हो। तुलना शायद थक गई थी, खुशवंत बोला, मुझे सिगार लाने चाहिए थे, मुझे आखिर तक याद था। तुलना ने वेणी उतारकर कॉर्निश पर रख दी और बोली, रीगल के सामने वेणी खरीदते समय भी मुझे याद था। फिर वह उठकर साथ वाले कमरे में चली गई। उसे पीले रंग की साड़ी इस समय कोफ्त देह लग रही थी। तुम्हें दिल्ली कैसी लगती है, गौतम ने खुशवंत से पूछा। I couldn't dislike it, खुशवंत ने पास पड़े कागज पलटते हुए कहा, लेकिन तुम बिल्कुल वैसे ही लगे, तुम्हारी हैंड राइटिंग तक नहीं बदली। चाय आई तो खुशवंत ने कहा, चाय पीकर मैं चलूंगा। नहीं तुम अभी नहीं जाओगे, कुछ देर बाद हम लोग कनॉट प्लेस चलेंगे, सिगार खरीदेंगे, कहीं अच्छी जगह बैठकर कॉफी पियेंगे, गौतम ने कहा, और तोमार मांझे पैलाम खुंजे गुनगुनाता हुआ एक एक कप में शक्कर मिलाने लगा। तुलना भी कपड़े बदल कर आ गई, वह सादी सी सफेद साड़ी में लिपटी थी। बैठने लगी तो उसका घुटना मेज से टकरा गया, हल्की खनक के साथ प्यालों से थोड़ी चाय तश्तरियों में गिर गई। तुलना घुटना थामकर वहीं कुर्सी पर औंधी हो गई। गौतम उठा और चापलूसी के अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता उसका घुटना दबाने लगा। तुलना सुबकने लगी तो वह चोट का ख्याल करके अंदर से आयोडीन ले आया। घुटने पर कहीं भी चोट का कोई चिन्ह नहीं था, मगर तुलना की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। गौतम यूं ही घुटने के इधर उधर आयोडीन भीगी रुई से मालिश करता रहा। मेरा ख्याल है मेज से टकरा कर फ्रैक्चर नहीं हो सकता, खुशवंत कॉर्निश पर रखी वेणी को सूंघते हुए बोला। वह गौतम और उसकी बीवी की ओर देखते हुए कुछ देर उबाइयां लेता रहा, फिर दूसरे कमरे में चला गया और ग्रामोफोन पर रिकॉर्ड चढ़ाने लगा। अभी आप सुन रहे थे रविंद्र कालिया जी की लिखी कहानी डरी हुई औरत। गाथा पर इसे आपके लिए प्रस्तुत किया पूजा श्रीवास्तव ने।